Lecture number 12, page number 72. Om Namah Siddhevya, Om Namah Siddhevya, Om Namah Siddhevya, Om Shuddhatmane Namaha, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sauvasahunam. Vaddamanas Dansanamaggam Vocchami Yahakammam Samasena. यह कुंदकुंदाचार्य लिखित अष्टपाहुड़ जो है, उस अष्टपाहुड़ के हम गाथा नंबर 2 के जो प्रवचन है उसके हम 72 नंबर पर आए हैं। वहां देखिए, ये जो भगवान है, भगवान की क्वालिटी देखी जाए तो एक ही है। भगवान के नाम देखे जाए तो हजारों है, और भगवान के गुण देखे जाए तो वे अनंत हैं। तो यहां कोई भी नाम से क्यों न कहा जाए, लेकिन वहां जो भगवान की क्वालिटी है उसमें कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कोई विशिष्ट नाम लेते हुए उनका स्वरूप हम किस तरह से है यह जानने की कोशिश कर रहे थे। कल हमने देखा था इसके 72 नंबर पेज पर, उसे ब्रह्मा क्यों कहते हैं। तो हर जगह ऐसी मान्यता है कि जो सृष्टि की रचना करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि भगवान के लक्षण क्या है बेन? वितरागी और बस इतना ही। हाँ, और देखो भगवान के लक्षण कौन से हैं बेन, आप कहना। हाँ अच्छा, आपने कहा वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, बराबर। आपका कहना बराबर है ऐसा आपको लगता है। हमने क्या पूछा, भगवान के लक्षण क्या है? तो भगवान कितने प्रकार के होते, यहां से शुरू करना पड़ेगा हमें। बोलो भाई। हाँ जोर से बोलना, सुनता नहीं मैं। हाँ यानी अरिहंत और सिद्ध, तो इन दोनों को मिलकर हम भगवान कहते हैं। तो सिद्ध हितोपदेशी होंगे कि नहीं? तो हमने आपसे तीर्थंकर के लक्षण नहीं पूछे थे, हमने आपसे भगवान के लक्षण कहे थे। तो वो सिर्फ दो ही होते हैं, कौन से? एक वीतरागी और एक सर्वज्ञ। अब जो वीतरागी है, ऐसे जीव को सृष्टि बनाने की इच्छा होगी कि नहीं? और ऐसा कोई मानता है कि भगवान ने, ब्रह्मा ने उसको बनाया? तो कल इस बहन ने बहुत बढ़िया एक दलील दी हमको, जो आज तक मेरे ख्याल में कभी नहीं आई थी। बोलती, एक भगवान सृष्टि बनावे और दूसरे उसको नष्ट करे, तो बनाने वाले भगवान और उनमें युद्ध होता होगा कि नहीं, क्रोध होता होगा कि नहीं? फिर भगवान काय का कि जो बनी बनाई चीज को चुपचाप नष्ट होने देते हैं? यानी देखो कैसी कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें। यहां तो कह रहे ब्रह्मा यानी क्या, जगत स्वयं सिद्ध अनादि अनंत है, किंतु भगवान का आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करके ब्रह्म स्वरूप यानी ज्ञानानंद स्वरूप हो गया है इससे, यानी क्या, देखो ये स्वभाव से तो प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है, लेकिन पर्याय में उसने ये प्रकट किया है, वो उसने नई सृष्टि बनाई है समझ लेना, वो उसकी नई क्या कहते देन है कहो, या नया उसका क्रिएशन है कि स्वरूप में ही ब्रह्मत्व यानी परिपूर्णत्व प्रकट किया है, इससे वे ही वास्तविक ब्रह्मा है, स्वयं अपने आत्मा को केवल ज्ञानादि के उत्पन्न करने वाले हैं। हरि ब्रह्मा और हरि भी कहते हैं, आत्म स्वभाव के भान और स्थिरता द्वारा सर्व कलुषितता यानी क्या विकार को हर लिया है, इसलिए भगवान स्वयं ही हरि है। क्या कहते हैं, पापम ओघ, ये ओध है कि घ चाहिए, पापम ओध हरति इति हरि, पाप के ओध को हरे वह हरि है, यानी पाप को जो नष्ट करता है हरण करता है वह हरि है, वह अन्य कोई भगवान पाप का नाश करने वाले नहीं है, किंतु आत्मा स्वयं स्वभाव में एकाग्र होकर अपने पाप का विकार का नाश करके परमात्मा हो गया है, वह ही हरि है। बुद्ध हाँ? ये मैं भी नहीं समझा, ये मेरे को शब्द ओघ चाहिए क्या, यानी पापम ओध हाँ? वही तो मैं सोच रहा था, यानी ओघ यानी जिसको हम कहते हैं ना, जैसे वाटर का फ्लो रहता है वैसा पाप का जो फ्लो है उसको जो नष्ट करता है, ऐसा मुझे लगता है। ओ अब ये लिखा है गलत है या मैं समझ रहा हूँ वो गलत है, मैं भी नहीं जानता। पाप ओघ ये बौद्ध धर्म लिखा है, वो बौद्ध धर्म चाहिए हाँ, बुद्ध के आगे लिखा है ना, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध देव कहे जाते हैं वे नहीं किंतु ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करके स्वयं भगवान स्वयं बोध स्वरूप, इसलिए उन्होंने बौद्ध किया, बोध यानी ज्ञान, बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो गए हैं, इसलिए वे ही वास्तविक बुद्ध है, इनके अतिरिक्त अन्य कोई देव वंदनीय नहीं है, भगवान इनके अलावा सर्वज्ञ वीतराग इत्यादि और भी अनेक नाम है, भगवान के इनके अलावा यानी अभी तक जो हमने देखे थे उसके अलावा, अरिहंत भगवान को शरीर का संयोग होता है परंतु वह शरीर परम अवदारिक होता है। ये परम अवदारिक क्यों कहा जाता है मालूम है, हाँ मिली भाई, कल उज्ज्वला ने बताया था, कल आए थे ना आप, नहीं आए थे, अच्छा दिव्य बेन आप जानती परम अवदारिक क्यों कहा जाता है, हमारी लक्ष्मी बेन बता रही है, शरीर में रहने वाले जो निगोदिया जीव है वह निकल जाते हैं और वह जो अवदारिक शरीर है उसी को परम अवदारिक कहेंगे, वह बिल्कुल जिसको हम कहते हैं स्फटिक मणि जैसा हो जाता है, उसमें रोग क्षुधा तृषा इत्यादि नहीं होते, ये पहले तो तीन बताए, रोग क्षुधा तृषा इत्यादि में और कितने लेने प्रेरणा बहन, हाँ इत्यादि में और 15 लेना है ऐसा बोलो या टोटल 18 लेने वो हाँ, ये सब दोष है ना, ये 18 दोषों से रहित हमारे जिनेन्द्र भगवान होते हैं। अभी तो जो यह मानते हैं कि अरिहंत भगवान को भी चाहिए है, क्षुधा तृषा होती है रोगादि होते हैं, उन्होंने तो वास्तविक रूप से अरहंत देव का स्वरूप भी नहीं जाना। देखो भाई
देखो यहाँ जो रोग शोक वगैरह बताए ना, रोग क्षुधा तृषा वगैरह और 18 दोष में सभी शरीर की बात यहाँ बता रहे हैं, इसलिए आदि में सभी 18 नहीं लेने, कौन कौन से होते हैं 18 दोष हाँ हाँ, जन्म जरा अभी शरीर में नहीं होते ठीक है, और कृत पिपासा जरा तंक रोगांतक भय स्मय। हाँ तो भय और स्मय वो कैसे होगा, वो उसमें शरीर में नहीं लेंगे हम, राग द्वेष चिंता वगैरह वो उसमें नहीं लेंगे, वो परिणामों में लेंगे। हाँ स्वेद इसमें होगा, खेद इसमें होगा, जो थकान आदि जो है वो उसमें हो सकते हैं, यानी वो दोष इसमें नहीं ऐसा ले सकते। 18 दोष में जो शरीर संबंधी दोष है उसको यहाँ लेना, चिंता वगैरह तो वो नहीं लेने ना। हाँ निद्रा भी शरीर में कहाँ होगी, रोग शुदा कृषा इत्यादि नहीं होते,
यानी यहाँ जीव के परिणामों को छोड़कर अन्य शरीर से लगते हुए परिणाम,
शरीर के जो लगते हुए शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो इसमें
लेना, ऐसा आपका कहना है। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये क्षुधा और तृषा जो है वह क्या है, दुखरूप परिणाम है या सुखरूप परिणाम है, दुखरूप परिणाम है। और एक तरह से तो हम कहते हैं कि हमारे भगवान अनंत सुख स्वरूप है, उनके अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, और फिर ये दुख कहां से आया। एक बात क्या कह रहे हैं, उनको बीमारी आ जाए तो बीमारी भी कैसी है, सुखरूप है या दुखरूप है, तो उनको तो कुछ फील नहीं होता है लेकिन लोग मानते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल कह रहे हैं। तो उनने तो वास्तविक रूप से अनंत देव का स्वरूप भी नहीं जाना है, अर्थात उनके देव मूढ़ता है, और जिसे देव मूढ़ता मौजूद है ऐसे जीव को क्या कहेंगे सौभागचंद जी, हाँ अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि कहेंगे। हाँ समकीति के ऐसी देव मूढ़ता नहीं होती। अब देव के बारे में बात हो गई, अभी गुरु मूढ़ता के बारे में कहेंगे, गुरु का स्वरूप क्या है पहला समझाते हुए फिर लोगों की कैसी खोटी मान्यता है उसकी भी बात बताएंगे। यदि प्रयोजन अपेक्षा विचारा जाए तो अरहंत ही गुरु है, क्योंकि हम उनको परम गुरु कहते हैं ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत है, वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं, अतः वे परम गुरु है। और उन अरहंत भगवान के पश्चात उनके समान ही निर्ग्रंथ दिगंबर रूप को धारण करने वाले छद्मस्त ज्ञान धारक गणधरादि मुनिवर हुए, वे भी गुरु हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि अरिहंत भगवान के पश्चात, अब आगे क्या बताएं, उनके समान ही, तो कैसे उनके समान, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी कोई भी परिग्रह जिनके नहीं है, ग्रंथि यानी गांठ यानी लगाव नहीं है, और जो दिगंबर है ऐसे वो रूप धारण। तो यहाँ तो कह रहे कि जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसे ही मुनि अवस्था में होते हैं वे जीव। तो कहे छद्मस्त है लेकिन, और छद्मस्त ज्ञान धारक गणधरादि मुनिवर हुए वे भी गुरु है, उनमें भी अरंत भगवान जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक देश शुद्धपना है, केवली के पूर्ण शुद्धता है और मुनियों के आंशिक शुद्धता है, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक मुनि भी गुरु है। और उन मुनियों को जो एक देश शुद्धता है वह उनके संवर निर्जरा एवं मोक्ष का कारण है, अतः अरिहंत भगवान के जैसे ही मुनिवर भी गुरु है, वे मुक्ति मार्ग का उपदेश करने वाले हैं। अब उन मुनिवरों में आचार्य उपाध्याय और साधु ऐसे तीन प्रकार हैं, उनमें मुनिपना तो सामान्यपन एक ही प्रकार का है, यानी बेसिकली सभी मुनि ही होते हैं। जैसे कोई स्कूल होवे तो कोई स्टैंडर्ड है, मान लो 10वां स्टैंडर्ड है 5वां स्टैंडर्ड है, तो सभी जीव वहां के चौथे पांचवी में होने वाले चौथी तो पास करके आते हैं, उसमें एक मॉनिटर होता है वो भी चौथी पास है, कोई पहली पास वाला पांचवी का मॉनिटर नहीं होता। वैसे यहाँ आचार्य उपाध्याय और साधु ये सभी साधु तो होंगे मुनि तो होंगे, लेकिन उनमें ग्रेडेशन कैसे आती वो बात बताएंगे अभी। क्या कहते हैं, उनमें मुनिपना तो सामान्यपन एक ही प्रकार का है, बाह्य लिंग भी समान है, यानि बाह्य में नग्नता जो है वो सबको होगी। पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती, इस प्रकार 13 प्रकार का चारित्र भी समान है। देखो ये 13 प्रकार के चारित्र कौन कौन से हैं, ऐसा पूछते हैं ना, तो ये हमें बताया पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र, इनमें भी समानता है। तप शक्ति अनुसार होता है, उनका स्वरूप भी समान है। साम्य भाव, तीन कषाय के अभाव पूर्वक उपशांत दशा, सभी दशा भी सभी मुनि वरों के समान ही है। कोई मुनि दिगंबर हो और कोई मुनि वस्त्र सहित हो, ऐसा जैन मार्ग नहीं है। तो उनके साथ में अहलक और शुल्लक भी होते ना, शाबाश, तो वो पंचम गुण स्थान वर्ती, वो मुनि नहीं है। तो कहे ऐसा जिन मार्ग नहीं है, जैन मार्ग में सभी मुनि दिगंबर दशा वाले ही होते हैं। तथा सभी के उत्तर गुण भी समान है, आहार आदि की विधि भी समान है। सच्चे जैन मुनि पात्र में आहार नहीं लेते, हाथ में ही आहार लेते हैं, तथा अपने लिए बनाया हुआ उद्दिष्ट ठने उद्दिष्ट आहार नहीं लेते। गमन, आसन, स्थान आदि समस्त चर्या यानी उनकी एक्टिविटी समान होती है। मोक्ष मार्ग के साधन रूप सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र भी समान होते हैं। देखो समस्त मुनियों की मूल श्रद्धा एक ही प्रकार की होती है, ज्ञान भी समान होता है, यद्यपि ज्ञान में न्यूनाधिकता यानी कम अधिकपना का भेद होता है, तथापि उसमें परस्पर विपरीतता नहीं होती। आचार्य उपाध्याय तथा साधु के मुनिपने में कोई फेरफार नहीं होता। ऐसी मुनि दशा के परिज्ञान बिना अन्य किसी को भी मुनि मान लेना वह गुरु मूढ़ता है। ये रू रस्व चाहिए क्या?
हाँ, गुरु रस्व चाहिए। हाँ? रू सर्वत्र रस्व चाहिए गुरु का। कहीं कहीं दीर्घ
समकीति सच्चे देव, यहाँ रस्व है, सच्चे देव गुरु धर्म के संदर्भ में मूढ़ता रहित होता है। आचार्य उपाध्याय साधु के आहार की विधि एक ही प्रकार की है, वे हाथ में खड़े खड़े एक ही बार आहार करते हैं, ऐसी ही विधि है। ध्याता ध्यान ध्येय भी समान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एवं तपरूप चार आराधना भी समान है। इस प्रकार मुनिपने की प्रवृत्ति तीनों के समान होती है। यहाँ ध्याता ध्यान और ध्येय, ये ध्येय कौन होता होगा उनके लिए, कौन से तीर्थंकर, कौन बताना? डॉक्टर आप बता रहे, स्वात्मा निज आत्मा वह ध्येय है, और ध्याता कौन है? हाँ हाँ, उसको जो ध्या रहा है, अपने निज स्वभाव को जो ध्या रहा है वही ध्याता, जिसको ध्याना है वही वह, और ध्यान रूप कर ध्यान करना यानी उनका ध्यान करना वह भी स्वयं ही करेगा। ये भेद करके ध्याता ध्यान और ध्येय ऐसे तीन प्रकार बताए, लेकिन है तो एक ही वस्तु को तीन एंगल से बताया गया है। जैसे कोई माँ भी होती है, कोई वही व्यक्ति मासी भी होती है, वही व्यक्ति भांजी भी होती है, इस तरह से लेना सब, यानी उन्हीं को ध्याता कहेंगे, उन्हीं को ध्यान और ध्येय भी, इन सबके समान होते, यानी सब अपने अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। चार तप भी एक जैसे होते हैं वगैरह वगैरह। इस प्रकार मुनिपने की प्रवृत्ति तीनों के समान होती है, या इनमें कॉमन जो पते हैं उसकी बात की, आचार्य उपाध्याय और साधु में। इन आचार्य उपाध्याय और साधु पदों की विशेषता इतनी ही है कि जो आचार्य है वे पंचाचार, ये पंचाचार क्या होता है सुशीला बेन, आप जानते हैं? पांच बताए आपने। हाँ साहब, बताए उन्होंने, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पांच प्रकार के आचार, दीक्षा आदि दूसरों को अंगीकार कराते हैं। ये किसकी बात चल रही है? आचार्य कैसे होते हैं, यानी ये जो बाकी बातें तो उनसे होती है, फिर भी ये विशेषता क्या है कि दूसरों को दीक्षा आदि देते हैं, किसी को दोष लगा हो तो उसका प्रायश्चित कराते हैं, धर्मोपदेश दीक्षा शिक्षा देते हैं, ऊपर कहे हुए मुनियों के गुणों सहित ऐसी पदवी के धारक आचार्य है, वे वंदनीय है। देखो ऐसे आचार्य हो वे ही वंदन करने योग्य है। इसके अतिरिक्त मिथ्यादृष्टि जीव अन्य प्रकार से आचार्य पद मनवाते हैं, वह वंदनीय नहीं है। अभी जरा सा विषयांतर कर रहा हूं। देवलाली में हम गए थे ना अभी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका शिविर, तो वहां एक जन आए थे, वो सफेद पहने हुए, तो जो उनको लेके आए थे बोले ये कौन है? है वो आचार्य है। तो हमने कहा खलास, बात उधर ही खत्म हो गई, क्योंकि स्त्री पर्याय का जीव आचार्य पद का हो ही नहीं सकता है। ख्याल में आया? यहां तो पुरुष पर्याय का जो जीव है, मनुष्य में पुरुष, वही साधु या मुनि या आचार्य पद को धारण कर सकता है। तो वो हमको कहते हैं ये आचार्य है, वहां के वो फला फला के आचार्य है, बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। यानी लोगों की कैसी गलत गलत मान्यताएं चल रही हैं वो मैं आपको बताना चाहता था। जो उपाध्याय है वे वादित्य विद्या में कुशल होते हैं, वादित्य ने वाद में करने में, जैन धर्म की प्रभावना के लिए अन्य मत के साथ वाद विवाद का प्रसंग आ पड़े या कोई जैन धर्म पर आक्षेप करे तो वाद विवाद द्वारा उसका खंडन करना पड़े, ऐसे प्रसंग में बुद्धि के सागर उपाध्याय अपनी तर्क आदि विद्या के बल से कुयुक्ति का खंडन कर देते हैं, उसको इस जाति का विकल्प होता है, तथा वक्तापना कवित्व एवं शास्त्रों के रहस्यों को प्रकट करने की बुद्धि रूप गमत्व विद्या में भी उपाध्याय प्रवीण होते हैं। वे मुख्य रूप से शास्त्रों का अभ्यास करते हैं और कराते हैं, जिसको हम कहते हैं पठन पाठन, स्वयं शास्त्र पढ़े अन्य को पढ़ावे, ऐसे उपाध्याय गुरु वंदनीय है। आचार्य और उपाध्याय पदवी धारकों के अलावा सभी मुनि साधु हैं, उनके भी मुनि दशा के योग्य मूल गुण उत्तर गुण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना आदि गुण तो आचार्य और उपाध्याय के समान ही है। उनको दीक्षा देना या दूसरों को पढ़ाने आदि की प्रधानता नहीं है, किंतु ये स्वयं अपने ही स्वरूप की साधना में तत्पर है। यद्यपि आचार्य उपाध्याय भी अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर है, तथापि उनके दीक्षा आदि देना भी होता है, जबकि मुनियों के वे वह नहीं होता। ऐसी दशा वाले निर्ग्रंथ साधु होते हैं, वे ही जैन मत में वंदनीय है। इसके अतिरिक्त वस्त्रादि सहित साधु नाम धरावे वे वंदन योग्य नहीं है। जिनको अंतर में मोक्ष मार्ग के साधन रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वर्तते हैं, 28 मूल गुण है, बाहर में वस्त्रादि का धागा भी नहीं है, ऐसे सभी मुनियों की दशा होती है। ये 28 मूल गुण नाम सभी किसको मालूम है? 28 मूल गुण, हाँ एक तो हाथ उड़ गया, हाँ आप नहीं जानते 28? आप जानती हैं? अच्छा पेन आप, हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा, जरा जोर से बोलना हो। हाँ पांच महाव्रत के पांचों ही नाम बताना है। हाँ कौन सा? बहुत अच्छा, पांच महाव्रत उन्होंने बताए, अहिंसा आदि से लेके ब्रह्मचर्य तक। हाँ आगे, पांच महाव्रत, पांच समिति, हाँ ईर्या समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। बहुत अच्छा, 10 तो खलास हो गया, अभी 1/3 बाकी है। हाँ हाँ, 5 सर। ठहरो, अभी बोलो मत, कोई कोई बताना नहीं साहब। अरे मास्टरानी होते हो ऐसा करती आप? अरे अरे, हाँ तुम तो कॉपी पकड़ना चाहिए, तुम ही कॉपी कर रहे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। हाँ बोलो कौन से? स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, विजय। हाँ हाँ, अरे क्रम से आना चाहिए ना। स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण, बहुत ऐसे ही दिया। चलो आगे, 5 और 5 15। अभी क्या बताया आपने? नहीं नहीं, इसने कुछ बताया? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो जरा नजीक बैठो भाई। हाँ 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 हाँ, अभी नाम बोलो आप, छे आवश्यक के। तो क्यों बोलते हो बीच में? अरे ये नहीं चलेगा, जो कॉपी करता है तो पूरा तो आना चाहिए, नहीं तो वो भी फेल हो जाओ और आप भी। षट आवश्यक कौन से हैं? सामायिक वंदना, स्तवन, प्रतिक्रमण, आगे बोलो आप, आलोचना और प्रत्याख्यान भी होगा ना, वो आपने नहीं बताया था। चलो ये 6 आवश्यक हो गए, अभी 7 शेष गुण मैं बताता हूँ आपको। बोलो 7 शेष गुण। हाँ हाँ, निर्ग्रंथपना बरोबर है, नग्नत्व, दंत धोवन, बहुत अच्छा, स्नान कहो ना, एक तीसरा, हाँ तीसरा बताया ना मैंने। हाँ, अदंत धोवन, भूमि शयन, बहुत अच्छा। इस तरह ये 18, हाँ केश लुंचन रह गया एक। अच्छा कोई बात नहीं, हमने समझ लिया कि आप समझ गए हो। देखो भाई, ये याद रहना चाहिए हमें, क्यों कि हमें मुनि का स्वरूप, गुरु का स्वरूप भी तो पक्का करना है ना। अभी जैसे हमने भगवान किसको कहते हैं, तो वितरागे और सर्वज्ञ, खत्म। तो हमने फिर उसके ऊपर हम सोचेंगे, बार बार मनन चिंतन होगा, और गुरु का यानी मुनियों का स्वरूप हमें मालूम होगा, उनकी ये एक प्रकार से बाह्य लक्षण है। वो उसी में जो घोटाले करते हैं वो तो मुनि योग्य है ही नहीं, पहले समझना, ख्याल में आया? और जो भावलिंगी संत है या जो द्रव्यलिंगी मुनि है, उनके बाह्य ये सारे आचरण जो है वो बिल्कुल आगम के अनुसार होंगे, लेकिन वह भी तो हमें खत पता होना चाहिए ना। अभी आप अभी पहले कौन सा कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में हमने देखा कि मुनि होते हुए कोई एक पहाड़ खरीद ले और वहां सारा जो कुछ होता है, मतलब धर्मशाला बांधे, मंदिर बांधे, वो पूरे उद्धार जो कुछ करना है वो मुनि का कार्य नहीं है। वहां तो आसक्ति रही, उसके लिए पैसा जमा करने, उसके लिए ये सही बात नहीं है। तो इसलिए हमें पहले मालूम तो होना चाहिए कि उनके महाव्रत कौन सा है, कि अपरिग्रह महाव्रत है, और ये पैसा आदि जमा करना क्या है, ख्याल में ना। ऐसा हम स्वयं उसके बारे में सोच के निर्णय करना चाहिए। ये बोल रहा है इसलिए निर्णय करना, वो बोल रहा है इसलिए निर्णय करना, ये तीसरा बोलता है तीसरा ही कुछ बोलना। अरे भाई, हमें तो कुछ डिसीजन लेने की पावर है क्या? नहीं, दूसरा कोई कहता हो तो हम माने, ऐसा मत रखो। क्योंकि हमें जब बिल्कुल पक्का उनके बाह्य लक्षणों का पता लगता है, अंतर लक्षण तो एक ही है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक भी तरागता है, वो तो हमें बाहर से दिखने से रही ना, हम उससे वाकिफ हैं कि इसको वितरकता कहते हैं, ये हमें कहां अनुभव है। लेकिन इस तरह से हमें ये बात समझना चाहिए, इसलिए बार बार पंचाचार कौन से होते हैं या 13 चारित्र कौन से होते हैं, ये बारीक बारीक बातें होती हैं, ये अन्यत्र कोई आपको इतना मतलब जो कहेंगे ना ठोक बजा के आपसे याद नहीं कराएगा। जो हमारी बुरी आदत है कि हम सब ये जानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्याल में। तो अपनी क्या बात हो रही थी? ये ऊपर से चौथी लाइन लास्ट पैराग्राफ में हम देख रहे थे, जिनके 28 मूल गुणों में ही दोष हो। हाँ सब, उत्तर गुण मंजे, उत्तर गुण याने जो मूल गुण शील है उसके भी उत्तर गुण होते हैं ना, भेद भेद। जैसे मूल कर्म है और उसके उत्तर मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति है, वैसे ये उसके अलग भेद। जैसे प्रमाद है, प्रमाद के हमने भेद कितने देखे थे, अधिक से अधिक। हाँ जोर से 37,500। वैसे और शील के कितने भेद होते हैं, 18,000। और 84,00,000 भेद किसके होते हैं? हाँ नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? शील के भेद होते हैं वो उत्तर भेद, उत्तर गुण जिसको हम कहेंगे। 18,000 नहीं है, 84,00,000 है। हाँ जी, और 84,00,000 मैं बता रहा हूँ आप। अब आगे तो यहाँ कह रहे हैं, जिसके 28 मूल गुणों में भी दोष हो, ऐसा जीव भले ही देह से दिगंबर हो। वंदनीय नहीं है, ये इन्होंने बता दिया और हमने मान लिया। क्यों हम मानेंगे? क्योंकि हमें जब पता लगता है कि वो वही बात कह रहे वो सच है, तभी हम उसको मानेंगे ना। अन्य लिंगी तो वंदनीय है ही नहीं, किंतु द्रव्य लिंगी हो तथापि यदि यथार्थ मूलगुण न हो, श्रद्धा में भी विपरीत हो, तो वह भी वंदनीय नहीं है। अभिभाव लिंगी संत मुनि तो दिखते नहीं, और मुनि दशा के योग्य बाहर व्यवहार यथार्थ हो, ऐसा कोई द्रव्य लिंगी मुनि भी दिखता नहीं। ये इंटू इन्वर्टेड कॉमा लिखा है, ये स्वामी जी ने बात बताई। समकीति जीव को ऐसे सच्ची मुनि देखने में न आवे और विपरीत श्रद्धा वाले दिखे, तो भी वह उदास नहीं होता। बाहर में स्पष्ट रूप से विपरीत प्रवृत्ति होने पर भी जो जीव उन्हें साधु मानता है, वह तो गृहित मिथ्या दृष्टि है। अहो, जैन मार्ग तो तीर्थंकरों से चला आ रहा है, उस मार्ग की शुद्धता में अन्य विपरीतता संभव नहीं है। अज्ञानी के अनादि से अगृहित मिथ्यात्व तो है ही, तदुपरांत वह कुदेव कुगुरु की मान्यता से गृहित मिथ्यात्व का नया ईंधन जलाता है। अरे, इस पंचम काल में द्रव्यलिंगी वेशधारी व्रतादि रहित परिग्रह युक्त और विषयों में आसक्त ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव गुरु नाम धराते हैं, ऐसे कुगुरु वंदनीय नहीं है। इस पंचम काल में जैन मत में तो ऐसे वेशधारी कुगुरु हुए हैं, जैन मत में भी ऐसे वेशधारी कुगुरु हुए हैं। उनके नाम देते हैं, सर्वप्रथम श्वेतांबर का नाम दिया है। श्वेतांबर अर्थात जो वस्त्रादि परिग्रह सहित मुनिपना मनावे, वे कुगुरु हैं। ऐसे कुगुरुओं को वंदनादि करना अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण है। देखो क्या करें, जो अभी कुछ दिन से या एकाध दो पीढ़ी से स्वामी जी के निमित्त से दिगंबरत्व जिन्होंने अवलंबन लिया है, दिगंबरों का, दिगंबर शास्त्रों का, दिगंबर देवों का, फिर भी अभी पुरानी जो कोई वो क्या कहते हैं लगन बाकी है ना, वो चिपती नहीं, कहीं ना कहीं देखने में आती है। जैसे दिगंबर होते हुए भी जो दिगंबर मुनि नहीं है ऐसे को भी जाके नमन करते हैं, और ये दिगंबरत्व यानी दिगंबर धर्म को मानना शुरू कर दिया, फिर भी उधर के लोग आ जाएं तो जाके तो दोनों एक जैसे हैं। स्वामी जी ने दोनों को नहीं छोड़ा है। केम्बेल क्या करे, या क्या कहते, कुगुरों को वंदनादि करना अनंत संसार में परिभ्रमण का कारण है। अब ये बात किसी के गले नहीं उतरे तो कौन क्या करे। यह बात 200 वर्ष पूर्व जयपुर के जयचंद जी पंडित जी ने लिखी है, और इससे पूर्व भी कुंदकुंदाचार्य देव इत्यादि संत अनादि से यह मार्ग दर्शाते आए हैं। यानी कुंदकुंद तो अभी 2000 वर्ष पहले, और आगे उनके पहले के वो भी यही मार्ग दर्शाते हैं। वस्त्रादि सहित मुनि दशा मानने या मनवाने या उन्हें वंदनादि करने में ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण का महापाप है। उसका फल क्या, तो अनंत संसार में परिभ्रमण। सैकड़ों वर्ष पूर्व तत्वारसार आदि में भी यह बात अमृत चंद्राचार्य देव ने की है। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमट सार में भी यह बात की है। इसका अर्थ क्या हुआ के गुरुदेव ने नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का गोमट सार भी पढ़ा था। आ गई ना बात। बिना पढ़े वैसा बताएंगे कि इसमें ये बात आई थी, ख्याल में आया। भगवान के मुक्त हुए पश्चात अमुक वर्ष में 12 वर्ष का महादुष्काल पड़ा, तब जो यथार्थ मुनि मार्ग का निर्वाह नहीं कर सके, यानी उसको फॉलो नहीं कर सके, निर्वाह यानी जैसा है वैसा उसको फॉलो नहीं कर सके, उन्होंने भ्रष्ट होकर श्वेतांबर मार्ग चलाया और परिग्रहादि के पोषक नवीन कल्पित शास्त्र बनाए। वे शास्त्र भगवान के नहीं, गणधर के नहीं, मुनिवरों के नहीं, अरे समकीति के भी नहीं, किंतु मिथ्या दृष्टि के बनाए हुए, और मिथ्या दृष्टि में भी गृहित मिथ्या दृष्टि के बनाए हुए। इतना जोर है, और जिसको इतना पक्का खात्री होगा वही बोलेगा कि नहीं। 12वीं गाथा में कहते हैं कि मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है। इस पंचम काल में यानी इसी के 12वीं गाथा में आएगा, वो अभी आया नहीं है, देख लेते हैं। देखो पेज नंबर 125 है, हम केवल अर्थ पढ़ते हैं, नीचे है जो हिंदी पद्यानुवाद के बाद, जो पुरुष दर्शन में भ्रष्ट है तथा अन्य जो दर्शन के धारक हैं उन्हें अपने पैरों पढ़ाते हैं, नमस्कार आदि कराते हैं, वे परभव में लूले मूक होते हैं और उनके बोधि अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति दुर्लभ होती है। अब ये भावार्थ में उन्होंने लास्ट में बताया है, लास्ट बट वन लाइन, अब एकेंद्रीय होकर निगोद में वास करेंगे। ये बात स्वामी जी या ऊपर उसके चौथे लाइन में देखो लिखा है, इसी के नीचे से चौथी, मिथ्यात्व का फल निगोद ही कहा है, मिल गया। ये बात हम पढ़ेंगे आगे जाके, अभी तो 50 पेने बाकी है उसमें। बारहवीं गाथा में कहते कि मिथ्यात्व का फल निगोधी कहा है। इस पंचम काल में श्वेतांबरादिक मिथ्यामत के आचार्य लोगों द्वारा विनय पूजा पूजनादिक चाहते हैं, उन जीवों का त्रस राशि में रहने का समय अब पूरा हो गया है। ये त्रस राशि का रहने का काल कौन सा और कितना होता है मालूम है भाई, हाँ 2000 सागर, वो अभी उनका पूरा होने को आया ऐसा कहते हैं, और अब एकेंद्रिय में निगोद में जाकर लूला गुंगा होकर अनंत काल निवास करेंगे ऐसा ज्ञात होता है। देखो यह कठोर बात नहीं, किंतु मिथ्यात्व के पाप का फल कैसा है उसका यथार्थ।
देखो लूला इसलिए कहा कि वहाँ कोई एकेंद्रियों का हाथ पैर नहीं होते, और गुंगा इसलिए कहा कि द्विंद्रिय से लेकर वाणी होती है, एकेंद्रियों को नहीं होती, इसलिए लूला गुंगा कहेंगे।
क्यों क्या बात है, यानी अर्थ नहीं किया? अरे वो तो 12वीं गाथा में करेंगे, अभी करेंगे तो आप हंसने लगे हैं। इन्होंने बहुत यथार्थ बताया, लूला कौन होता है जिसके हाथ टूट गए पैर टूट गए ऐसा, वो पंचेंद्रिय की अपेक्षा से आप सोचते हो, लेकिन जिसको हाथी पे हाथ भी नहीं और पैर भी नहीं वो क्या है? जिसको बोलने के लिए रसनेन्द्रिय नहीं है वो कैसा है? गूंगा है। देखो यह कठोर बात नहीं, किंतु मिथ्यात्व के पाप का फल कैसा है उसका यथार्थ स्वरूप बताया है। किसी व्यक्ति के विरोध के लिए यह बात नहीं है, किंतु जीव को स्वयं में मिथ्या श्रद्धा छोड़कर देव गुरु धर्म की सच्चा श्रद्धा करने की बात है, उसमें जीव का हित है। हे जीव, तेरे कान में ऐसी सत्य बात पड़े फिर तू दर्शन रहित ऐसे कुदेव कुगुरु कुधर्म को वंदन मत करना। भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में शुभोपयोगी मुनि को अपवाद मार्ग कहा है, यानी उनको कहा कि तुम शुभ में मत अटको ऐसा कह रहे, और शुद्धोपयोग में लीनता रहे उसे उत्सर्ग मार्ग कहा है। इसके बदले उसमें ही स्वच्छंदता के पोषण के लिए ऐसा अर्थ करते हैं कि जहाँ वहाँ जो अपवाद मार्ग कहा है वह ये जो श्वेतांबर साधु दिखते हैं वह है। आहा, जो ऐसे विपरीत अर्थ करके स्वच्छंद मार्ग का पोषण करते हैं वे भगवान के मूल मार्ग का विरोध करते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि उन्हें जीव नहीं मिलेगी, वे निगोद जाएंगे, मिथ्यात्व के पोषण का तो यही फल है। मिथ्यात्व के पोषण का फल है, यानी मिथ्यात्व तो है लेकिन उसमें और इंटरेस्ट करके उसका और वृद्धि कराते हैं। इनके अतिरिक्त यापनीय संघ भी भ्रष्ट है। वे ये यापनीय संघ नाम का एक संघ है, वे स्त्री को मोक्षादि मानते हैं, वे भी कुलिंगी है गाय। यापनीय बराबर है,
यापनीय पहले हुआ था बाद में वो श्वेतांबर हुआ।
गाय की पूंछ की पीछी रखने वाले गौपुच्छ संघ तथा निपुच्छ संघ द्रविड़ संघ आदि जो कोई भ्रष्ट कुलिंगी पंथों में कुगुरु हैं वे कोई वंदनीय नहीं है।
भगवान की परंपरा से चला आया मूल संघ, मूल संघ यानी जैसे महावीर भगवान की वाणी से जो बात चली थी गणधर आदि के द्वारा गुरु परंपरा जो हुई थी, तो जो मूल संघ है दिगंबर संप्रदाय उसमें 28 मूल गुणों के धारक दया का उपकरण रूप मोर पिछी तथा शौच का उपकरण कमंडल रखते हैं, यथोक्त विधि से हाथ में खड़े खड़े निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, यानी वो पानी पात्र कहते ना हाथ में लेते, किसी पात्र में भोजन नहीं करते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित है, ऐसे मुनिराज ही जैन मार्गण में वंदनीय है। इनको तो दर्शन कहा है, ये दर्शन पाहुड़ की बात चल रही ना, तो मुनिराज कैसे है, जिनेन्द्र भगवान जैसे निर्ग्रंथ अंतर बाह्य परिग्रह रहित ऐसी दशा वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाले हैं। भगवान तीर्थंकर देव ने दीक्षा के समय जैसा दिगंबर रूप धारण किया था वैसा ही दिगंबर रूप धारण करने वाले हैं, इसलिए वो जो मूल मार्ग है मूल संघ कहा उसको, अन्य कोई वेश धारण नहीं करते ऐसे मुनि ही वस्तुतः जैन दर्शन है और वे ही वंदनीय है। यानी जैन दर्शन कहीं किताबों में नहीं है, ये मुनिराज है जिनके इतनी वितरागता है, जो चलते फिरते सिद्ध कहा था ना उनको पूजा में, तो वो वास्तविक वे ही जैन दर्शन है कहते हैं। इस प्रकार गुरु का स्वरूप कहा, समकीति को गुरु के स्वरूप में किंचित भी कचास नहीं होती, यानी ये तो काल दोष है, थोड़ा चलता होगा, ऐसी बिल्कुल उसमें नहीं होती।
वो तो समकीति तो सही मानेगा जब ही तो समकित होगा। हाँ।
वह अन्य विपरीत पुलिंगी गुरुओं को निशंकपने कुगुरु जानकर वंदनादि नहीं करता, ऐसा अमूढ़ दृष्टिपना समकीति का चौथा अंग है। ये समकीति के अंगों की चर्चा चल रही है। कौन कौन से अंग देखे याद है? हाँ, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। वीतराग मार्ग में मुनियों का जैसा स्वरूप कहा है वैसा पहचानना चाहिए, भले ही स्वयं मुनि दशा न ले सके तथापि उसकी श्रद्धा रखे तो उसका जैन दर्शन में दंड नहीं है।
क्या
कहते हैं? वो स्वयं पालन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर मुनि दशा कैसी होती है इसका निर्णय तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो सम्यक कहीं नहीं होगा। किंतु मार्ग ही विपरीत मरवावे, वहां तो श्रद्धा विपरीत है। मार्ग की यथार्थ श्रद्धा रखनी चाहिए, ये श्रद्धा को पहले लिया है। यथार्थ मुनि मार्ग का पालन न कर सके, इस कारण मुनि का स्वरूप ही विपरीत मनवाने वाला तो विपरीत श्रद्धा का पोषण करके संसार में परिभ्रमण करता है, यानी स्वयं उसको नहीं पाल सकता तो कुछ मुनि के स्वरूप में ही विपरीतता अगर कह दे, और नहीं नहीं अभी ये काल दोष में ये चले, ऐसी बात है ही नहीं है। समकीति भले ही ग्रस्त हो तथापि उसे यथार्थ मुनि मार्ग की प्रतीति है। वह मुनिराज के अतिरिक्त अन्य कुलुंगियों को वंदनादि नहीं करता, यानी वो वंदन वगैरह आदि जो कोई उनके साथ जो व्यवहार से भी बातें होती वो नहीं करता। अब धर्म का स्वरूप, देव गुरु और धर्म की बात है ना, धर्म का स्वरूप। धर्म अर्थात क्या? जीव को संसार के दुख रूप नीच पद से छुड़ाकर मोक्ष के सुख रूप उच्च पद में स्थापित करे, धारण कर रखे, उसका नाम धर्म है। धारयति इति धर्मः। कहाँ धारण करता है वो, क्या करता है? तो मोक्ष के सुख रूप उच्च पद को धारण कराता है। देखो यह धर्म की व्याख्या, स्वर्ग का भव मिले वह भी संसार है, और जिस भाव से स्वर्ग का भव मिले वह भाव भी धर्म नहीं। क्या कहते हैं लोगों को तो ऐसे नहीं, वो कौन सा भव चाहते, वो तो कैसे परिणाम रखे तो अच्छी गति मिलेगी, तो स्वर्ग को अच्छा मान रखा है तो कहते वह भी संसार है, तो कौन से परिणाम रखे तो स्वर्ग का मिलेगा, तो ये जो कोई पुण्य परिणाम है तो वो कहते वह भाव भी धर्म नहीं है। तो जो धर्म नहीं उसको क्या कहेंगे हम? अधर्म है। हाँ। पुण्य से पैसा आदि का संयोग मिले वह भी धर्म नहीं है। पैसा आदि का संयोग क्यों मिले? पुण्य से मिलता है कि पाप से? और वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हाँ। और मानता है ये करने, अरे झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा थोड़े मिलेगा, क्या मान क्या रखा है? वो वर्तमान के पाप के कारण वो पैसा कमाता है ऐसा मान रहा है, परंतु जो पैसा मिल रहा है वो पुण्य के, पूर्व के पुण्य से मिल रहा है, परंतु वह भी धर्म नहीं है। तो पूर्व के पुण्य से पैसा मिले वो अच्छा कि बुरा? संयोग ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसमें वो अच्छेपन है कि जो हम फीलिंग करते हैं, भाव है उच्चे, उसको अच्छा माना, ये मान्यता बुरी है। आत्मा को अपने स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष दशा प्रकटती है। देखो सबसे आसान में आसान बात है, आत्मा तो स्वयं है और उसका लक्ष्य करने वाली ज्ञान की पर्याय हर समय विद्यमान है, जो पर में हम कुछ कर नहीं सकते उसके करने की कोशिश में आखिरी जिंदगी बिताते हैं, और जो कुछ होता है जो होने योग्य होता है, जो पूर्व कर्म के संयोग से कहो या अन्य अन्य निमित्त से बनता है, तो ये जो है ना आत्मा को अपने स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष दशा प्रकटती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, परंतु उसको छोड़कर हम किसके पीछे, संयोगों को जुटाने में और टिकाने में,
हटाने में भी
हाँ, जो अनिष्ट संयोग है उसको हटाने में, इष्टों को जुटाने में, उस मोक्ष सुख के कारण रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे मुनि को सर्वदेश होते हैं और श्रावक को एक देश होते हैं। ये जो रत्नत्रय कहा है तो मुनियों को तो सर्वदेश कहा, ऐसे एक देश रूप या सर्वदेश रूप धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना ना एक देश होता है ना सर्वदेश होता है, ये तो धर्म का मूल है। अथवा निश्चय व्यवहार ऐसे दो प्रकार का धर्म कहा, ये दूसरी पद्धति से अभी धर्म का स्वरूप बता रहे, निश्चय और व्यवहार, उसका मूल भी सम्यक दर्शन है। क्योंकि निश्चय व्यवहार, किसी को व्यवहार होता है किसी को निश्चय, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ है और वे उसी के होते जो सम्यक दृष्टि है। देखो सम्यक दर्शन के बिना तो व्यवहार धर्म भी नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना धर्म की उत्पत्ति होती ही नहीं है। कल वो बताया था ना रत्नकरण शावकाचार में, बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति वृद्धि फल फूल कुछ नहीं होता है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना धर्म की उत्पत्ति ही नहीं होती। इस प्रकार समकीति को देवगुरु धर्म के स्वरूप में मूढ़ता नहीं होती, किंतु वह यथार्थ मार्ग के परिज्ञान पूर्वक, यथार्थ है ने योग्य जो सही मार्ग है उसका परिज्ञान है ने सर्वांगीण ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान पूरा पूरा ज्ञान पूर्वक प्रवर्तता है, ऐसा संकीति का अमूढ़ दृष्टि अंग है, उसके मूढ़ता नहीं है सच्चा निर्णय है, ऐसे उसके अमूढ़ दृष्टि होती है। अब आगे का जो है पांचवें नंबर का उपब्रूहण अथवा उपगुहन, दो नाम है इसके, उपब्रूहण वो ब चाहिए, वो किया है ना उन्होंने उपब्रूहण, हिंदी में ब्रू ब्रू
वो वह है
बढ़ाना, उपब्रूहण ने बढ़ाना, ब्रूहण ने बढ़ाना और गुहन ने छिपाना। तो अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना वो उपब्रूहण अथवा उपगुहन अंग है। अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि करना ही परमार्थ से उपगुहन है। देखो आत्मा की शक्ति को बढ़ाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकास करना, ऐसी समकीति की भावना है। पुण्य या संयोग को बढ़ाने की भावना समकीति के नहीं है, ऐसा उसके उपगुहन अंग है। शिष्य बढ़े या संयोग की वृद्धि हो इससे कोई आत्मा की वृद्धि नहीं है, इसमें आत्मा को क्या मिला, आत्मा का उल्टा उसके पीछे लक्ष्य दे देकर उपयोग उसका भ्रष्ट हो रहा है। किंतु स्वभाव के अवलंबन से निज ज्ञानादि शक्ति का विकास बढ़ते जाना उसका नाम उपब्रूहण अंग है, वो ब्रू करना। निज स्वभाव के अवलंबन से कहा, शास्त्र पढ़ पढ़ कर ज्ञान बढ़ाने की बात यहाँ नहीं कही, पढ़ाने का निषेध नहीं है, परंतु मूल बात जो है सम्यक दर्शन है आत्मा का। कल वो गाथा आई थी ना कि अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होकर भी आत्मा को नहीं जाना तो उसने कुछ नहीं जाना, और अल्प शास्त्र पढ़कर भी आत्मा को जाना तो उसने सब कुछ जाना। तथा इस अंग को उपगुहन अंग भी कहते, पहले उपब्रूहण कहा अभी उसी को उपगुहन क्यों कहते वो बात बता रहे हैं। ये ऊपर जो है ना सेकंड लाइन में उपगुहन कहा था वहां उपब्रूहन चाहिए था,
ये पांच नंबर का आंकड़ा है,
पांच आंकड़ा लिखा है ना ऊपर, उसके नीचे
दूसरी लाइन,
क्योंकि वहाँ सब जगह ब्रूहन की बात की थी उन्होंने,
वहाँ ब्रूहन लिखना चाहिए क्योंकि बढ़ाने की बात चल रही ना,
शक्ति को बढ़ाना लिखा था, बढ़ाने ने ब्रूहन
बहुत ठिकान में है।
अभी गुहन का अर्थ क्या उसको बता रहे, उपगुहन अर्थात क्या, जिन दर्शन में कोई आठ वर्ष का बालक हो वह महाभावलिंगी संत हो, जिन दर्शन में का अर्थ होता है जैन सिद्धांत में, जैन फिलोसॉफी में, अंतर में आनंद में झूलता हो, आत्मा का ही अर्थी हो, अर्थी यानी प्रयोजन उसका आत्मा को जानना, उसमें स्थिर होना ही है, ऐसे संत हो, उन्हें सहज कोई दोष हो जाए तो उनकी निंदा करके जैन धर्म की अवहेलना न होने दे, किंतु अपनी बुद्धि आदि से उसे छिपाए। क्या कहना चाहते हैं, अन्य जो धर्मी है तो समय दृष्टि जीव, अन्य धर्मी के कोई दोष उसके जानने में आ जाते हैं तो उसको डिंडोरा नहीं पीटेंगे सब जगह, ये इसने ऐसा किया ऐसा किया, तो उसको समझाएंगे, उसका दोष उसको बता देंगे और उसमें सुधारा करेंगे, तो उसकी निंदा नहीं करेंगे। कोई ऐसा कहे अरे ऐसे तुम्हारे गुरु, तो वहाँ गुरु की निंदा न होने दे। गुरुपद तो आत्मा में है या शरीर में, शरीर को देखकर कोई ऐसा भी कहते कैसे तुम्हारे गुरु, इतना कपड़ा भी नहीं पहनते, तुम जैनी हो ऐसा कहने वाले है हो, जैनी तो सबसे रिच पीपल होते हैं और उनके गुरु ऐसे कि क्या उनको देने के लिए कपड़ा नहीं है समाज के पास, ऐसे कहने वाले।
ये आज की बात नहीं है, जब आदिनाथ मुनि अवस्था में थे और वह आहार के लिए निकलते थे, अरे ये हमारा राजा नंगे पैर चल रहा है, लोग इंपोर्टेड जूते लाके दे देते,
अरे कन्या ले लेकर जाते थे उनको ले बिहाने के लिए,
क्यों उन्हें मालूम ही नहीं था ना आहार किस तरह से उनका पड़गावना हो,
यानी मुनियों को क्या देना चाहिए क्या, कोई विवेक नहीं था उस, क्योंकि ऐसा कोई उपदेश देकर दीक्षा तो नहीं ली थी कि ऐसा करो अभी मैं दीक्षा लेने वाला हूँ बाद में, ऐसी बात नहीं होती है। ऐसा समकिति का पांचवा उपब्रूहन या उपगुहन अंग है, दोनों ओर से बता दिया, अपने शक्ति को बढ़ाना और अन्य जो धर्मी है उनके कोई दोष ख्याल में आते हैं तो उसको छिपाना, उसको वो अच्छी तरह से सीधी तरीके से उसको समझा कर वो दोष का निराकरण भी करेंगे, फिर उसको स्थिति, वो स्थितिकरण में भी आता है, स्थितिकरण अंग, स्थितिकरण में अपने भी स्थितिकरण और पर की भी, जो धर्म से च्युत होते हो उन्हें उपदेश आदि द्वारा धर्म में दृढ़पने स्थिर करना स्थितिकरण अंग है। स्वयं को धर्म क्या है इसकी खबर हो तो ही अन्य को धर्म में स्थिर करे ना, जिसको स्वयं को ही पता नहीं वो दूसरे को क्या करे। तात्पर्य है कि समकिति को ही ऐसे अंग यथार्थ होते हैं और ये हमको ऐसा करना चाहिए करके लोग एक दूसरे को करते, हम स्थिति कर रहे किसी की या हम किसी का उपगोहन कर रहे हैं, वो बात यथार्थ नहीं है। समकिति को कोई निंदा दी करे अनादर करे वहां संदेह नहीं होता कि अरे ऐसे पापी अधर्मी जीवों को जगत में आदर हो और मैं धर्मी तथापि मेरा अनादर हो। जगत में अधर्मी का विशेष मान सम्मान होता हो तो वह देखकर ऐसा नहीं होता कि इसमें कुछ सच्चाई होगी, यानी वो तो जानता है ये तो क्या पुण्य पाप के खेल है, उसमें कोई मायना नहीं रखता। धर्मी का अनादर होता हो और पापी जगत में पूजाता हो वहां धर्मी जानते हैं यह तो पूर्व के पुण्य के कारण पापी भी पूजाते हैं। धर्मी का पुण्य कदाचित कम हो और बाहर में अनादर हो तो इससे वह अपने धर्म में शंका नहीं पड़ने देते, किंतु श्रद्धा ज्ञान की दृढ़ता रखकर अपने को धर्म में स्थिर करते हैं। अस्थिरता के कारण कोई संदेह हो या आचार में दोष लग जाए तो दोष टालकर फिर से दृढ़पने लिखा है दृढ़पने करो तो अच्छा है,
दृढ़ चाहिए,
दृढ़पने अपने को धर्म में स्थिर करते हैं। बीमारी आदि में शिथिल परिणाम होते देखकर तो स्वयं अपने को पुरुषार्थ द्वारा स्थिर करे कि अरे आत्मा, जिंदगी में समाधि मरण का अवसर आया, आराधना की सफलता का अवसर नजदीक आया और अभी ऐसी शिथिल प्रवृत्ति क्यों?
शी बराबर करो,
शिथिल, शी पूरा करना। अभी तो इस देह का परित्याग कर स्वर्ग में जाकर भगवान के समीप जाना है, अतः इस देह का लक्ष्य छोड़ अपने चैतन्य को संभाल, चैतन्य का उत्साह ला, इस प्रकार आत्मा को आराधना में उत्साहित करके स्थिर करना। आराधना ने अपनी आराधना स्व में स्थित होना, वह स्थितिकरण है। तथा अन्य धर्मात्मा से भी कोई सहज दोष हो गया हो, पहले अपने आप को स्थिर करना, और दूसरे के कोई दोष हो गया या उसके परिणाम धर्म में शिथिल देखे तो उसको भी प्रेम पूर्वक उपदेश आदि से धर्म में स्थिर करे, उसकी निंदा करे ऐसे नहीं कहा, प्रेम से उसको समझाकर धर्म में स्थिर करे, उसकी अटक मिटाकर धर्म में दृढ़ करे, ऐसा समकीति का स्थितिकरण अंग है। यही रुकते भी।
जावानी के ज्ञान तय तुझे लो कालो सोवाणी मस्तकण मो सदा देतो। अश्विन भाई।